मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 7 फरवरी 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग जीवन के फिजिक्स पर फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम जीवन के फिजिक्स को जानें या यूं कह लीजिए कि फिजिक्स को जीवन पर अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले तो फिजिक्स को समझ लेना चाहिए कि दरअसल जिसे हम फिजिक्स कहते हैं वह है क्या। और सच पूछिए तो इस विषय को चुनने के पीछे दोस्तों मेरी एक बहुत सोची समझी रणनीति है। बेहतर होगा कि मैं आज उस रणनीति का खुलासा कर ही दूं। और रणनीति यह है कि देखिए, आप रोज जीवन के बारे में सुन रहे हैं और सच बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि आप जीवन के बारे में नहीं जानते। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हर भारतीय जीवन के बारे में तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जीवन के बारे में वो भले ही किताब न पढ़ पाए, उसे अक्षर ज्ञान न हो, वो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात न कर पाए, फिलॉसफी न समझ पाए, ये बात अलग है, वो सिद्धांतों को न समझ पाए, वो ज्योग्राफी पर बात न कर सके, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो हर भारतीय, चाहे वो कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, कितना भी अनपढ़ क्या एकदम अनपढ़ क्यों ना हो, दूर दराज के गांव में क्यों न रह रहा हो, लेकिन वो जीवन के बारे में जो बातें करता है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है। और उसका कारण है भारत की अपनी फिलॉसफी और सच पूछे तो हमारे अपने ग्रंथ। बचपन से हम उन ग्रंथों की कहानियों को सुनते आ रहे हैं, हमारी चेतना में रच बस गए हैं और सच पूछिए तो उन्हीं कहानियों ने हमारे व्यक्तित्व और हमारी चेतना का निर्माण भी किया है, तो इसीलिए हर कोई जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि जानने के बाद भी हम उसे अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाते, यानी कि वह कौन से अवरोध हैं जो हमें आचरण में लाने से रोकते हैं। इस पर जब मैं बहुत विचार करता हूं तो फिर अभी मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, सबसे पहले हमारे जो लोग हैं उन्हें जो विज्ञान है उस विज्ञान के बारे में बताया जाना चाहिए और विज्ञान के भी फिजिक्स के बारे में कि देखिए विज्ञान दरअसल है क्या। जिसे हम फिजिक्स कहते हैं वो अगर समझ जाएं कि फिजिक्स कोई बहुत ज्यादा सिद्धांतों की बात नहीं है, बल्कि फिजिक्स वही चीज है जिससे ये पूरी प्रकृति चल रही है, और इसे बहुत व्यावहारिक स्तर पर यदि मैं बताने में सफल रहा तो फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप सब मेरे जो प्रिय श्रोता हैं इनको समझ लेने के बाद अपने जीवन पर अप्लाई करने लगेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर एक वह तीसरा नेत्र उत्पन्न हो जाए जो समस्याओं को अलग तरीके से देख पाएगा, देखने के बाद उसका अलग तरीके से विश्लेषण कर पाएगा और विश्लेषण करने के बाद उसका अलग तरीके से अपने ही स्तर पर समाधान भी निकाल पाए। तो यही सोचकर मित्रों मैंने सोचा कि नहीं, जीवन का फिजिक्स, इस पर भी कुछ बात की जानी चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो फिजिक्स है दरअसल हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरी की पूरी दुनिया के केंद्र में है, मूल में है। यानी कि अगर हम सारे के सारे विज्ञान को समाप्त कर दें, विज्ञान की शाखाओं को समाप्त कर दें, है ना, अलग अलग विषय हैं, चलिए विज्ञान की शाखाओं को नहीं, किसी भी डिसिप्लिन को समाप्त कर दें, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, कोई भी विषय हो, उन सबको समाप्त कर दें और अकेला फिजिक्स बचा रहे, तो मान करके चलिए कि हमारा ज्ञान बचा हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे कि प्रलय आ गई और प्रलय के बाद हमारे मनु बचे रह गए, तो मनु से फिर वर्तमान संस्कृति और संस्कृति और सभ्यता और जीवन का विकास हुआ। ठीक मुझे जो ज्ञान है, ज्ञान की जितनी भी दुनिया है, ज्ञान का जितना भी पर्यावरण है, ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, अगर इन सबको समाप्त कर दिया जाए और फिजिक्स बचा रह जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मान के चलना चाहिए कि मनु बच गए हैं और अभी हम ज्ञान की दूसरी शाखाओं को पल्लवित पुष्पित कर लेंगे, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, जो मूल था वो बचा हुआ है। मित्रों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कल मैंने थोड़ी सी बातें फिजिक्स के बारे में आपसे की थी और उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे साइंस के जितने भी ब्रांचेज हैं आप देखिए कि उसके केंद्र में फिजिक्स ही है। फिजिक्स से तथ्य ले लेकर के फिर ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों का विकास हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एटम है, ठीक है, एटम। अब आप देखिए कि एटम में इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और वो सब ये घूम रहे हैं, न्यूक्लियस है, ये पूरी की पूरी एक संरचना है, एक पदार्थ की संरचना है। अब आप देखिए कि ये जो पदार्थ की जो बहुत ही बारीक संरचना है, ये फिजिक्स का हिस्सा है, लेकिन जब हम अलग अलग तत्वों पर इसे लागू कर देते हैं कि भाई ऑक्सीजन गैस की परमाणु संरचना कैसी होगी, आयरन की परमाणु संरचना कैसी होगी, पानी की परमाणु संरचना कैसी होती है, तब फिर वो केमिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो केंद्र है वो फिजिक्स है, फिजिक्स से ही वह तथ्य आया हुआ है। जब तक हम परमाणु की संरचना को समझ नहीं लेंगे, तब तक फिर उसे अलग अलग क्षेत्रों पर अप्लाई करेंगे कैसे। इसीलिए देखिए कि जो फिजिसिस्ट होते हैं या जो भौतिक शास्त्री होते हैं, उन्हें मैं सही मायने में वैज्ञानिक मानता हूं, जो दर्शन देते हैं विज्ञान का या पदार्थ का दर्शन देते, पदार्थ का ही दर्शन कह लीजिए जो देते हैं, वो भौतिक शास्त्री ही देते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा अपने जीवन पर अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर तभी तक स्वस्थ रहता है जब तक कि मेरा ब्लड प्रेशर सही तरीके से काम कर रहा हो। तो यहां है ब्लड का प्रेशर, यानी कि जो मूलभूत तथ्य क्या हो गया, प्रेशर। मेरा पूरा का पूरा ब्लड मेरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, लगातार संचरित करता रहता है। ये जो सर्कुलन है, सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन क्या है, ये फिजिक्स का हिस्सा है। मेरा दिल धड़कता रहता है, ये जो धड़कन है ये फिर से फिजिक्स का हिस्सा है। आप सर्कुलेशन को, धड़कन को गति कह सकते हैं। अगर मेरे दिल के धड़कन या दिल की गति बहुत तेज होने लगे तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। नब्ज की गति अगर शिथिल पड़ जाए तो कुछ प्रॉब्लम है। मेरे एक मानस की एक स्थिति है, ये मानस की स्थिति बहुत डूबने सी लगे तो पता लगेगा कि ये डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि जब दबाव कम हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। जब मेरा एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मेरे अंदर के जो तत्व हैं उन तत्वों में से जब एंगर वाला तत्व बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो मैं क्रोधित हो जाता हूं। अब आप देखिए कि मैंने ये बहुत ही छोटी छोटी बातें बताई हैं, है ना, दिल की धड़कन, ब्लड का संचरण, रक्त का दबाव जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है। तो इसमें जो दूसरा शब्द है जिसे मैं प्रेशर कह रहा हूं, सर्कुलेशन कह रहा हूं, धड़कन कह रहा हूं, ये इनफैक्ट क्या है? आपको नहीं लगता कि ये सब फिजिक्स के हिस्से हैं? हाँ, जब हमने इस धड़कन, गति, इन सब सिद्धांतों को मनुष्य के शरीर पर लागू कर दिया तो उस पर लागू करने से जिस विज्ञान का जन्म हुआ उसे हमने कह दिया जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान की खोज पड़ताल करते करते फिर हमने जब स्पेसिफिकली मनुष्य के इलाज के लिए अगर कोई विकसित किया, ज्ञान की शाखा विकसित की, तो हो गया मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान। कुल मिलाकर के तो यही है। लेकिन इसके केंद्र में कौन है? दोस्तों, इसके केंद्र में है फिजिक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज मैंने जीवन से इसे थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की है। आगे हम लोग फिर इस पर बातें करेंगे, लेकिन सच पूछे तो मेरी बातों में वजन तभी आ पाएगा जब आप लोग भी अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों की बात ही मेरी बात को मजबूत बना सकेगी, उससे उसके डायमेंशन को फैला सकेगी, और सबसे बड़ी बात है कि उसे व्यावहारिक भी बना सकेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबकी प्रतिक्रियाओं और आप लोगों के विचारों की प्रतीक्षा करूंगा। दो दिन का वक्त आप सबके पास है जब आप सोच विचार कर अपनी बात रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और अभिवादन भी। नमस्कार।